ये बड़ी अजीब और गरीब मिस्ट्री है कि सारे शास्त्र एक जगह तो कह रहे हैं कि ईश्वर करता है, फिर अपने ही इस निर्णय को आगे चल के काट देते हैं, वो कहते हैं फिर ईश्वर अकर्ता है। इसको थ्योरी, इसकी थ्योरी समझने के बजाय इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है, जो हमारे मतलब का है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। वैसे महाराज ने तो बड़ा इसके बारे में स्पष्ट निर्णय कर दिया है, जब तक जीव अपने आप को कर्ता समझ रहा है, और वो मैं समझता हूं, मैं करता हूं, कितना भी विचार कर लें इस भाव से मैं मुक्त नहीं हो सकता, विचार के द्वारा तो कम से कम नहीं हो सकता। तो जब तक जीव अपने आप को कर्ता समझ रहा है, तब तक उसकी भलाई इसी में है कि वो ईश्वर को कर्ता जाने। जीव के कर्तापन को खत्म करने के लिए ही शास्त्र ईश्वर को कर्ता कहते हैं। वास्तव में जीव सत्ता ही भ्रम है, या यूं कह लें जीव का जो कर्ता भाव है ये भ्रम है। और जीव जब कर्ता भाव से मुक्त होता है तब उसको पता लगता है कि वो ईश्वर है। जीव जब कर्ता भाव से मुक्त हो गया उस समय वो ईश्वर है, तो फिर ईश्वर किसके लिए करेगा? फिर सोचो जरा, जब जीव ही खत्म हो गया तो ईश्वर किसके लिए करेगा? इसलिए वो अद्वैत स्थिति है, ना वहां संसार है ना वहां जीव रचना है, वहां केवल ईश्वर है। इसलिए उस समय उसका नाम ब्रह्म कहा जाता है, उस ईश्वर को उस समय हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के नीचे सारा भ्रम है। लेकिन मेरे बारे में ये सत्य है कि मुझको संसार सत्य दिखाई पड़ रहा है, लोग भी सत्य दिखाई पड़ रहे हैं। यदि ये सत्य नहीं होते तो किसी को मैं यदि कष्ट देता हूं तो मुझको पाप लगता है, उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ती है, प्रकृति मुझको उसी रूप में दुख वापस लौटा देती है। यदि मैं किसी को सुख देता हूं तो प्रकृति मुझको सुख रूप में उस फल को लौटाती है। इसका मतलब तो प्रकृति तो ईश्वर की है, तो इसका मतलब तो संसार सत्य हो गया। तो प्रैक्टिकली देखने में आपको संसार सत्य ही नजर आएगा और ईश्वर मिथ्या नजर आएगा, क्योंकि ईश्वर नजर ही नहीं आ रहा आपको। सारी दुनिया में आप ये कहते हो कि इसके करने से ऐसा हो गया, उसके करने से ऐसा हो गया, ये ऐसा नहीं करता तो ये कैसे हो जाता, यही तो कहते हैं हम लोग। इसका मतलब सारे लोग करता है, ईश्वर करता नहीं है। संसार की दृष्टि में लोग करता है, ईश्वर करता नहीं है। जबकि वाणी कुछ दूसरा निर्णय कर रही है, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। महाराज जी ने यह भी कहा, प्रेमी कभी भूल के भी मत कहना कि ईश्वर नहीं है। रामकृष्ण परमहंस भी कह रहे हैं, जो कुछ भी संसार में क्रियाएं होती हैं ये मां करती है। ईश्वर की जो शक्ति है उसको वो मां करके कहते थे। तो अब बताइए कि जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरण, किरण का अस्तित्व बिना सूर्य के हो सकता है क्या? कभी कल्पना करके देखिए, सूर्य के बिना किरण का कोई अस्तित्व है? देखिए हमारे अनुभव में तो है, यहां धूप आ रही है तो किरण ही लेके आ रही है उसको, तो किरण का अस्तित्व सूर्य के कारण है, या यूं कह लिए वो सूर्य ही है, या यूं कह लिए कि सूर्य का अंश है। धूप से सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो कर्ता किसको कहोगे? कहोगे सूर्य करता है। जबकि सूर्य के हिसाब से देखोगे तो सूर्य अकर्ता है, वो स्थित है अपने आप में, वो कुछ भी नहीं कर रहा, हो रहा है सब कुछ। तो इसीलिए जब तक ये द्वैत संसार है, मैं मौजूद हूँ, ये सामने प्रकृति मौजूद है, लोग मौजूद हैं, तब तक ईश्वर की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं, ये बात सत्य है। जिस प्रकार सूर्य कुछ भी नहीं करता, फिर भी सूर्य की शक्ति से प्रकृति के सारे कार्य होते हैं। ना लोग पैदा हो सकते हैं, ना वनस्पति पैदा हो सकती है, ना धरती पर जीवन रह सकता है। सूर्य के बिना कुछ करे हुए भी ये कुछ नहीं होगा। ठीक यही स्थिति ब्रह्म की भी है। ब्रह्म है तो ब्रह्म की शक्ति भी है। तो इसलिए महाजी ने कहा समता विलास में, ईश्वर एक शक्ति है, लेकिन खाली शक्ति नहीं कहा उसको, उन्होंने कहा वो चेतन शक्ति है, वो चेतन प्रकाश है। सूर्य में प्रकाश है लेकिन चेतना नहीं है उसके अंदर, वो जड़ है। ईश्वर का जो प्रकाश है, ईश्वर की जो शक्ति है, वो चेतन शक्ति है, वो जानने वाली सत्ता है। इसलिए ईश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, मुझको पता है। महाजी कहते हैं प्रेमी, इस देह का यदि विवेक हासिल कर लिया जाए तो ईश्वर का निश्चय आ जाता है। हमारे अंदर ईश्वर का निश्चय है नहीं, है तो बड़ा कच्चा है। इसीलिए जो शास्त्र हमारे भले के लिए कह रहे हैं उसका हम बार बार उल्लंघन करते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर का निश्चय पक्का नहीं है हमारे अंदर। सोचते हैं शायद यही ठीक है। तो महाजी कह रहे हैं प्रेमी, देह का विवेक हासिल करने से ईश्वर का निश्चय आ जाता है। और ये बात महाराजी ने समता विवेक चैप्टर में 31वें वचन में लिखी है। तो देह का विवेक क्या है फिर? तो देह की रचना के बारे में वो कहते हैं कि देह 5 तत्व से, मन बुद्धि अहंकार से इसका निर्माण हुआ है। अर्थात ये देह की जो रचना है, देह रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है, ये चीजें इसके अंदर क्रिया कर रही हैं। तो मैं यदि इसका साधारण सा विश्लेषण भी करूं, बहुत गहरा विश्लेषण की जरूरत नहीं है, साधारण सा भी विश्लेषण करूं, तो मुझको अच्छी तरह से पता है कि देह जो है उसी मेटीरियल से बनी है जिस मेटीरियल से संसार बना है। तो संसार भी 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये देह भी 5 तत्व से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन 5 तत्वों के 5 गुण है, हर तत्व का एक गुण होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 तत्वों के गुण है। इसलिए जब तक मैं इस देह को अपना स्वरूप समझ रहा हूं, तब तक ये 5 विकार मेरी प्रॉपर्टी बने हुए, मेरी संपत्ति बने हुए। जब तक मैं देह को अपना स्वरूप समझ रहा हूं, ये 5 विकार से मैं कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। पूरा का पूरा जीवन मेरा 5 विकार के अंतर्गत ही बीतेगा, चाहे मैं 100% ईमानदार क्यों ना हूं। लोगों को ईमानदारी का बड़ा अहंकार होता है ना, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं। तो 100% भी आप ईमानदार बन जाओ, तब भी ये 5 विकार के अंतर्गत ही आपका जीवन चलेगा, इससे 1% भी आप मुक्त नहीं हो सकते। तो ये जो 5 तत्व हैं, और 5 तत्व का ये शरीर लिए बैठे हैं हम, तो ये 5 तत्व के अनुभव के लिए ही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यही तो अनुभव करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्वों की 5 तन्मात्राएं हैं जिसका अनुभव हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। और ज्ञान इंद्रियों को भोगों की तरफ प्रेरित कौन करता है? मेरी देखने की इच्छा है, देखना ये ज्ञान इंद्रिय है। सुंदर दृश्य देखने की इच्छा है मेरे अंदर, तब सुंदर दृश्य देखता हूं। इसको प्रेरित कौन कर रहा है? मन इसको प्रेरित कर रहा है। तो देखने का संकल्प तो मन में उठ रहा है ना। जब देखने का संकल्प उठ रहा है, तब आप देखने की क्रिया कर रहे हो। बिना संकल्प के आप देखने की क्रिया नहीं करोगे। जैसे गहरी नींद क्या है, वहां वो संकल्प रहित अवस्था है, इसलिए कोई ज्ञान इंद्रिया काम नहीं कर रही। आप देह मौजूद है, देह जिंदा है, लेकिन मन में संकल्प गहरी नींद में कोई भी नहीं उठ रहा है, इसलिए सारी क्रियाएं भी बंद है आपकी। जैसे ही आप जागते हो गहरी नींद से, एकदम से जो आप जागते हो आपको यह पता भी नहीं होता कि क्या है ये। पहले संकल्प आता है कि मैं घर में सोया था, घर में ही हूं मैं, पूर्व की तरह पश्चिम की तरह। कभी कभी गहरी नींद में उठो तो दिशा भ्रम भी हो जाता है, ये पता ही नहीं रहता कि दरवाजा किधर है। तो संकल्प पहले आता है, संसार का बोध आपको बाद में होता है, ये आपके बारे में सत्य है। तो मन के संकल्प को आप इंद्रियों के द्वारा देह और संसार में पूरा करते हो। देह तो एक इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए, और संसार मेटीरियल है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, संसार मेटीरियल है या पदार्थ है। तो संसार रूपी पदार्थ के द्वारा आप अपने मन की जो डिजायर है, मन की जो इच्छा है, उसको पूर्ण करते हैं। इसलिए आपकी अच्छी इच्छाएं भी, बुरी इच्छाएं भी, पाप की इच्छाएं भी, पुण्य की इच्छाएं भी, सारी की सारी इच्छाएं 100% आपके लिए बंधन है। इसलिए जिसके अंदर विवेक है वो हर कर्म को बंधन रूप देखता है। किस चीज का अहंकार करे वो, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, तेरी सारी क्रिया बंधन रूप है, तो किस चीज का तू अहंकार करेगा, तू बड़ा अच्छा आदमी। तेरी अज्ञानता ही तुझको ये मजबूर करती है कि तू अच्छा आदमी। सत्य ये है कि तू बंधन में है, तू गुलाम है, इच्छाओं का तू गुलाम है। तो इसीलिए सत्पुरुष कहते हैं कि जब तक तू इस मन के बंधन से मुक्त नहीं होता, तेरी बेचैनी बनी रहेगी। तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए ही ये ईश्वर का निश्चय जरूरी है। तो वो ईश्वर का निश्चय आपके अंदर आए, इसलिए महाजी ने समता विलास लिखी थी, उसका विशद विश्लेषण किया वहां पर। भले ही हम उसको लापरवाही से पढ़ें या उसको पढ़ने की जरूरत ही ना समझें, चार चीजें जान ली हमने, समझ लिया कि मैं तो ज्ञानी हो गया, मैं सब जानता हूं, सारी अध्यात्म विद्या मैं समझ गया, नहीं सूत्र रूप में सब जान लिया, उससे काम नहीं चलता। जहां जहां आप अहंकार की मार खाते हो, जहां जहां अज्ञानता आपको दबोच लेती है, उसका आपको होश ही नहीं होता, कहां आप पकड़े गए। तो बुद्धि का भी ऐसा अहंकार है जो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए बार बार कहा जाता है कि गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति समर्पण जरूरी है, इसके बिना तुम्हारा गहरा ज्ञान दूर नहीं होगा। इसलिए कभी यह अहंकार मत करना कि मैं ज्ञानी हूं, सब समझता हूं, तुमको पता ही नहीं कि समझ किसे कहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि देह का विवेक हासिल करने से ही आत्मनिश्चय आ जाता है। तो आप मन के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हो, इंद्रियों के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हो, देह के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हो, संसार के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन ये तो सोचो तुम्हारी जो ये देह है इसका इस्तेमाल तुम मन की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये भूल रहे हो कि देह में जीवन भी तो है, देह में जान भी तो है, कभी उसके बारे में नहीं सोचा। जिस पंखे की करंट निकल जाए वो पंखा क्या पंखा रहेगा, लोहे का टुकड़ा रह जाएगा वो। तो देह तो मृत चीज है, ये जिंदा किस कारण से है, चल किस कारण से रही है, इसका कर्ता धर्ता कौन है? ये तो वहम मुझको नहीं होना चाहिए कि मेरे कारण से देह जीवित है। तो जिसके कारण से देह जीवित है हम उसको कर्ता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे पता है जिस्म के अंदर जान है, और महाजी कहते हैं कि जिसके अंदर जो जान है इसी का नाम है ईश्वर शक्ति। तो अब बताइए, जिस्म और जान का निर्णय करने के लिए गीता लिखी गई, जिस्म और जान का निर्णय करने के लिए समता विलास लिखी गई, और जिस्म और जान के भेद को समझने के लिए गुरु हमारे आगे प्रकट हुआ। तो यदि हम उस शास्त्र को ही नकार दें ये कह के ये कठिन है, या अज्ञानता में ये समझ के कि सारी बातें तो मैं समझता हूं, वो पांच नियम महाजी ने बता रखे हैं, बस पांच नियम पालन करने हैं, बाकी क्या पढ़ना क्या सुनना, तो ये अज्ञानता हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी कहीं का नहीं छोड़ेगी। पूरी जिंदगी आपको शास्त्र का अध्ययन करना ही पड़ेगा, चाहे आप आईएएस ऑफिसर हो, चाहे बहुत बड़े इंजीनियर हो, चाहे बहुत बड़े फिलोसफर हो, पूरी जिंदगी आपको शास्त्र का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिकली गुरु ने जैसा मार्गदर्शन दिया है उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। जैसे जैसे चलते रहोगे वैसे वैसे आपकी बुद्धि का रिफाइनमेंट, बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाएगी, और जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होगी वैसे ही वैसे आपको शास्त्रों की गहराई पता लगती चली जाएगी। उस समय आपको पता लगेगा कि मैं यदि इन शास्त्रों को लगातार नहीं पढ़ता तो कितनी बड़ी मूर्खता करता। अभी तो आपको शास्त्र एक बोझ लगता है, जिस समय बुद्धि आपकी बारीक होगी उस समय यही शास्त्र आपको अमृत जैसा लगेगा, जैसे इसमें से अमृत निकल रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार आज तो नाम जप करना बड़ा कठिन लगता है, बड़ा रूखा सा लगता है, लेकिन जब नाम जप करने की आदत बन जाएगी, ईश्वर का निश्चय आपका पक्का होगा, उस समय यही नाम आपको अमृत जैसा लगेगा। उस समय कहोगे प्रभु यदि आपने विवेक ना दिया होता तो कठिनाई समझकर रूखा समझकर मैं नाम जब छोड़ देता, तो आज ये अमृत जो मुझे मिल रहा है ये अमृत फिर मुझे कैसे मिलता। तो इसीलिए जब तक मेरी देह है हम भूल कर भी ये ना सोच लें कि ईश्वर अकर्ता है। जब तक मेरी देह, सब कुछ आपके लिए ईश्वर कर रहा है, यह प्रैक्टिकली आपको दिखाई भी पड़ रहा है। आप खुद देख लीजिए, वाणी आई या नहीं आई, महामंत्र आया या नहीं आया, यह किसी मनुष्य की रचना है? यह किसी मनुष्य की रचना है क्या? महाराज जी को पता था कि महामंत्र क्यों आ रहा है? महाराज जी को खुद नहीं पता था महामंत्र आने के बाद भी यह क्यों आ रहा है। महामंत्र आने के पश्चात वाणी आनी शुरू हो गई, महाराज जी का संकल्प तो नहीं था ना, वाणी महाराज जी की रचना। वाणी आई है या नहीं आई है? और वाणी का जो स्थान है संसार में वो सर्वोच्च होता है, वेद वाणी है। जो चार वेद का महत्व है वही संता प्रकाश ग्रंथ का महत्व है, क्योंकि वो वाणी है, इसको श्रुति कहा जाता है। श्रुति उसको कहते हैं जिसका सुनने वाला तो है, बोलने वाला कोई नहीं है। महाराज जी के मुंह से वाणी निकल रही है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग वहां पर नहीं, नदारा था, इसलिए महाराज जी को वाणी का पता ही नहीं होता था। जब भगत जी दिन में महाराज जी के लिए नहाने के लिए पानी लाते थे, फिर पीने के लिए उनकी चाय बना के लाते थे, उसके पश्चात महाराज जी कहते थे बनारसी जरा सुना ईश्वर की रात क्या कृपा हुई। तो भगत जी जब वाणी महाराज जी को सुनाते थे तो कुछ शब्द छूट जाते थे बीच में लिखने से, कहीं कोई गलती हो जाती थी, तब भगत जी कहते थे महाराज जी ये छूट गया यहां पर, क्या लिखूं यहां पर। तब महाराज जी को सोचना पड़ता था, तुरंत नहीं आ जाता था शब्द वहां पर। तो इतना करेक्ट सारा एक्सप्लेनेशन आ रहा है सृष्टि का, ईश्वर का, जीव का, वो करेक्ट आ रहा है। और जब बुद्धि का प्रयोग हो रहा है तो एक शब्द भी सोचना पड़ रहा है महाराज जी को कि यहां क्या करेक्ट वर्ड हो सकता है। लेकिन ज्ञानी तो थे, अनुभवी थे वो, नहीं सारी सृष्टि का भेद पता था उनको, इसलिए वहां एप्रोप्रिएट वर्ड क्या फिट हो सकता है वो बताते थे उसको, और भगत जी लिख लेते थे उसको। लेकिन विचार करने की बात यह है कि जहां लगातार वाणी आ रही है, घंटों आ रही है, वहां सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां एक वर्ड फिट करना है वहां सोचने की जरूरत है। तो अब बताइए वाणी का आना क्या क्रिया है नहीं है, ये महामंत्र का प्रकट होना ये क्रिया है नहीं है, तो ये क्रिया प्रकृति में हो रही है नहीं हो रही है, तो जीव के कारण तो नहीं हो रही है। महाजी तो साफ कहते ये इनकी रचना नहीं। अमर लोक से वाणी आई, वाणी खुद ही कह रही है अमर लोक से वाणी आई, सकल जीवों के ताप मिटाई। ये सारे जीवों के ताप मिटाने के लिए, मन के अंदर जो ताप है हमारे उसको खत्म करने के लिए ये वाणी आई। तो जहां मनुष्य की पहुंच नहीं है वहां से वाणी आ रही है, उसका नाम है अगम लोक। तो अगम लोक का मालिक कौन है भाई? कोई मनुष्य या पशु तो अगम लोक का मालिक नहीं है। अगम उसे कहते हैं जहां इंद्रिय मन और बुद्धि की पहुंच नहीं है, उसे अगम लोक कहते हैं। तो अगम लोक है ना, तभी तो वहां से वाणी आ रही है। तो उस अगम लोक का मालिक कौन है? ईश्वर ही मालिक है। तो हम जीव भले ही शास्त्र में लिखा हो कि ईश्वर अकर्ता है, हम कभी नहीं कह सकते कि ईश्वर अकर्ता है, क्योंकि मैं जब करता हूं कर्तापन के बंधन में हूं। यदि ईश्वर कर्ता ना हो तो मुझे मुक्त कौन करेगा? मेरे दुख को कौन जानेगा? इस निवृत्ति का उपाय कौन बताएगा? जरा सोच कर तो देखो, संसारियों का संग करूं सारे अज्ञानी हैं ये, इनका संग करना तो ऐसे ही हुआ जैसे चोर चोर का संग करे, महाचोर हो जाएगा। संसारियों को यदि मैंने अपना मार्गदर्शक बनाया तो एक दिन मैं महापापी हो जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता इस बात, क्योंकि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। रजोगुण ऑटोमेटिकली तमोगुण में बदल रहा है, ऑटोमेटिकली बदल रहा है। इसलिए सृष्टि में या यूं कहिए संसार में जैसे जैसे भोगवाद बढ़ेगा, जैसे जैसे यहां सांसारिक उन्नति होगी, जैसे जैसे विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, वैसे ही वैसे मनुष्य का दुख बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और एक दिन इसकी यह स्थिति आ जाएगी कि इसको होश ही नहीं होगा क्या ठीक है क्या गलत है। आपस में ही महाजी कहते हैं स्वार्थ इतना बढ़ जाएगा कि आपस में ही एक दूसरे का हक हासिल करने के लिए आपस में ही लड़ लड़ के ये तबाह हो जाए। तो कई शताब्दी में उन्होंने उन्नति की है, वो थोड़े ही वक्त में ये नाश कर देंगे अपने हाथों से। तो मनुष्य की करनी का नतीजा तो ये निकलना है। तो यही नतीजा मेरे घर में भी निकलेगा और यही नतीजा मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी निकलेगा। तो इसलिए मेरे लिए रास्ता ही कोई नहीं बचता गुरु की बात पढ़ने का, गुरु की बात समझने का, इससे अलावा कोई रास्ता ही कोई नहीं। यदि मैंने अपना कल्याण चाहना है तो गुरु को ब्रह्म जानकर, गुरु को ईश्वर जानकर, क्योंकि वो है, मैं मान नहीं रहा हूं कि वो ईश्वर है, वो है ईश्वर। उस ईश्वर की यदि मैंने अवज्ञा की, समता विलास जैसा शास्त्र मेरी भाषा में प्रकट हुआ है मेरे कल्याण के लिए, उसको यदि मैं गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं समझता, अपना जो मेरा स्वभाव है, अपनी जो मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार निर्णय करके कहता हूं मेरा काम चल जाएगा बिना पढ़े भी, तो तूने तो मार खानी ही खानी है, कोई बचा नहीं सकता तुझे। सत्य है कि हम तो शास्त्र पढ़ना ही नहीं जानते, शास्त्र पढ़ा कैसे जाता है? हम सेंटेंस के सेंटेंस पढ़ जाते हैं, पैराग्राफ के पैराग्राफ पढ़ जाते हैं, पेज के पेज पढ़ जाते हैं, शास्त्र को कैसे पढ़ा जाता है हम जानते ही नहीं। पहली रीडिंग में तो शास्त्र पढ़ा जाता है कि लिखा क्या है इसमें, इसके मीनिंग भी मेरी समझ में आते नहीं आते हैं, ठीक है, पहली रीडिंग तो नॉलेज के लिए आदमी करता है, लेकिन उसके बाद शास्त्र पढ़ा जाता है मनन के लिए। और मनन के लिए हो सकता है एक शब्द ही काफी है कई दिन के लिए आपके लिए। मान लिया आपने एक शब्द पढ़ लिया समता विलास में ईश्वर प्रायणता, अब ईश्वर प्रायणता पढ़ लिया आपने, वर्ड जो यूज होता है वो विशाल मीनिंग लेके यूज किया जाता है। अब वो विशाल मीनिंग क्या है, आपने उस मीनिंग तक पहुंचना है। जैसे कि मान लिया एक शब्द मैंने प्रयोग किया जंगल, अब जंगल तो पढ़ लिया, किसी बच्चों का तो जंगल पढ़ लेगा वो, लेकिन जंगल का मतलब यह है कि जंगल क्या होता है, जंगल शब्द पढ़ते ही वो सारा भाव आपके अंदर आ जाए, तब आप जंगल का मीनिंग समझते हो। जंगल कैसा होता है, जंगल में क्या होता है, क्या कठिनाइयां होती हैं, सब कुछ जो है कैसा भयानक होता है या क्या प्राकृतिक शोभा होती है, सारी चीजें जंगल वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक जंगल का मीनिंग समझने में मुझे कई दिन लग सकते हैं और कई किताबें पढ़नी पड़ सकती हैं, तब जंगल का मीनिंग समझ में आएगा मेरे। इसको मनन कहते हैं। जिस पिक्चर को दर्शाने के लिए वो जंगल शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो सारी की सारी पिक्चर जंगल शब्द उच्चारण करते ही मेरे सामने आ जानी चाहिए, तब मैं समझता हूं कि मैंने जंगल का मीनिंग पढ़ा है। तो इसीलिए इस प्रकाश में आप देखो कि समता विलास पढ़ना कितना लंबा काम है, ये कितना लंबा काम है। और जो वर्ड्स पढ़ते हैं वो कहेंगे ईश्वर प्रणाता, ईश्वर प्रणाता तो 100 जगह लिखा हुआ है, महाजी को क्या जरूरत थी 100 जगह ईश्वर प्रणाता लिखने की, एक ही जगह लिख देते। कर्तापन, कर्तापन 100 जगह लिखा हुआ है, महाजी को कर्तापन 100 जगह लिखने की क्या जरूरत थी, एक ही जगह लिख देते। हम क्या इतने मूर्ख नहीं समझते क्या, समझ लेते, एक ही जगह समझ लेते। तो हम तो ईश्वर को भी अपनी बुद्धि के आधार पर तोल लेते हैं कि ईश्वर ने भी गलती की है, मेरे हिसाब से नहीं लिखा। तो अपनी सीमित बुद्धि रखकर मैं असीमित बुद्धि का विश्लेषण कर रहा हूं। ईश्वर की तो असीमित बुद्धि है। तो इसीलिए हमारी यही स्थिति हो जाती है कि जब हम समता विलास में ये पढ़ते हैं, गीता में भी यही लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ ईश्वर करता है, दूसरी जगह लिखा हुआ है ईश्वर अकर्ता है। गीता पढ़ोगे वहां भी आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, ये क्या बात हो। तो मैं जहां खड़ा हूं, मुझे जो ईश्वर सिखाना चाह रहा है, उसके लिए ईश्वर करता ही है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, भाग्य विधाता। क्यों कहा जाता है भाग्य विधाता उसको, क्योंकि संसार में मुझको वो भाग्य देकर भेजता है, इसी भाग्य का नाम है प्रारब्ध। जन्म मेरा हो रहा है, जन्म पत्री ईश्वर तैयार कर रहा है। इस जन्म में कहां रहूंगा, कौन मेरे माता पिता होंगे, कैसे होंगे वो, दुनिया कैसी मिलेगी, क्या दुख मिलेंगे, क्या सुख मिलेंगे, किसमें सफलता मिलेगी, किसमें असफलता मिलेगी, ये उसने देकर भेजा है। तो यदि इस संसार में आकर मैं बड़ा सफल इंसान बन जाऊं और मेरे अंदर ये विचार आ जाए कि देखो मैंने कैसी मेहनत की, कितना योग्य आदमी हूं मैं, देखो कितना सफल जीवन मैंने व्यतीत किया है, मैं दूसरों को लेक्चर दूं, तू भी ऐसे ही कर, तू भी सफल हो जाएगा। तो यदि मैं आध्यात्मिक हूं तो ये मुझको अपनी बेवकूफी नजर आएगी, यदि आध्यात्मिक हूं तो, नहीं तो मैं अहंकार का शिकार हो जाऊंगा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर निर्माणता बढ़ती है, हर दिन उसके अंदर निर्माणता बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे अध्यात्म पे चलेगा वो, उसके अंदर होश बढ़ता रहेगा, तू अकर्ता है प्रभु करता है। जब तूने किया ही नहीं है तो अहंकार किस बात का कर रहा है, और अहंकार करेगा तो किस चीज का करेगा, मैं महेश हूं, नाम मेरा महेश है, देह मेरी महेश है, इसी का तो अहंकार करेगा। लोग इसको देख के कहेंगे ये बड़ा अच्छा आदमी है, तो तेरा पतन हो रहा है या उत्थान हो रहा है। सत्पुरुष कह रहे हैं, गुरु कह रहा है तू जीव है, और तेरी करनी कह रही है तू महेश है। तो तेरी ये करनी तुझको गर्त में ले जा रही है या ईश्वर की तरफ ले जा रही है, विचार करके तो देख। इसलिए मनुष्य के जो गुण है ना, वही उसके लिए अभिशाप बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको देह के अहंकार में ग्रसित कर देते हैं, देह के अहंकार में फंसा देते हैं। किसी से भी यदि कोई जीव तारीफ चाहता है, कोई मनुष्य तारीफ चाहता है, याद रखिए तारीफ चाहना ये इस बात का प्रतीक है तू देह का अहंकारी है। तो ये होश नहीं है, तारीफ करवा के तेरा पतन होगा, तुझे होश ही नहीं है इस बात का। यदि तेरे अंदर तारीफ सुनने की इच्छा है कान से कि लोग मेरी तारीफ करें, तो तुझे इस बात का होश ही नहीं है कि तू अपने पतन के रास्ते पर जा रहा है, तू अपने पतन की इच्छा कर रहा है इनडायरेक्टली। इसीलिए अध्यात्म विज्ञान बड़ा गहरा हो जाता है जब सही रूप में इस विद्या का विवेक हासिल होता है। इसलिए इसको तलवार की धार कहा जाता है कि ईश्वर के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। लेकिन तलवार की धार कब बनती है? बिगिनिंग में नहीं है ये। जैसे जैसे आपकी प्रगति होती जाएगी तलवार की धार तेज होती चली जाएगी, क्योंकि उतना ही गहरा विवेक चाहिए फिर आपको आगे बढ़ने के लिए। विवेक की पराकाष्ठा चाहिए, अभी तो तेरे अंदर प्रारंभिक विवेक भी नहीं है। इसलिए महाजी ने कहा प्रेमी जब तक मन में एक कामना भी बाकी है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, यह इनके अनुभव की बात है। तो इसलिए माइन का समाधि के बाद भी जीव का पतन हो जाता है, क्योंकि समाधि के बाद सिद्धियां आपके अंदर आ जाती हैं। दूसरे के मन की बात जान लोगे आप, दूसरे का रोग दूर करने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी, जो बोलोगे तुरंत सिद्ध हो जाएगा वो। तुम कहोगे हाथ में अंगूर का गुच्छा आ जाए, तुरंत आ जाएगा आपके। तो सिद्धियां प्राप्त करके क्या होगा आपके अंदर अहम आएगा नहीं आएगा? यदि सिद्धियों का प्रयोग किया आपने तो अहम आएगा, देखो मैं सिद्ध हो गया। जिस मैं को खत्म करने के लिए तूने समाधि की कोशिश की थी, समाधि के लिए प्रयत्न किया था, तेरा प्रयत्न निरर्थक हो गया, वो तो मैं और स्ट्रांग हो गया। तो जैसे जैसे अध्यात्म में प्रगति होती है मनुष्य निर्माण होता चला जाता है। बड़े से बड़ा अपमान भी वो ईश्वर का वरदान समझता है कि प्रभु अब ये वरदान मुझे मिला है, टेस्ट का मौका मिला है कि मैं अपना टेस्ट कर सकूंगा कि मेरा जो अपमान हुआ मैं उससे कितना परेशान हुआ। तो देखिए अध्यात्म मार्ग इतना सरल नहीं है। ये कहना भी गलत है कि मैं आध्यात्मिक हूं, कहां कहां मैं पापी हूं, कहां कहां मैं गलतियां कर रहा हूं, उसका मैं विश्लेषण सही सही नहीं कर पा रहा, इसलिए कहां मैं आध्यात्मिक हूं, मैं संसारी ही हूं। बस यह है कि संसारियों के में बिगड़े हुए लोग भी होते हैं, मैं थोड़ा सुधरा हुआ हूं, संसारियों के मुकाबले में अच्छा हो सकता हूं, लेकिन गुरु के दृष्टि में मैं अच्छा नहीं हूं, फिर अहंकार में अंदर भरा पड़ा हुआ है, पांच विकार का मैं शिकार हूं। तो इसीलिए जब तक मैं विकारी हूं, जब तक मुझको देह का अहंकार है, या यूं कहिए कि मैं अपने आप को देह करके देख रहा हूं, मेरे नाम से कोई गाली दे दे, जब तक गाली मुझे बुरी लग रही है तब तक मैं गहरे अज्ञान में जी रहा हूं। मैं ये भी नहीं समझ रहा हूं कि मैं जीव हूं, अपने ही मन और अपनी ही देह के बंधन में जी रहा हूं, ये मेरा बंधन है। तो इसीलिए इस बंधन से यदि कोई बचाने वाला है तो अंतर्यामी परमेश्वर है, वही गुरु है, वही मालिक है। तो उस प्रभु की प्रेम से याद मैं तभी कर सकता हूं जब मेरी बुद्धि में विवेक हो, और विवेक जो आता है वो केवल सत्विचार से आता है, और सत्विचार जो शास्त्र में लिखित विचार है उसको सत्विचार कहते हैं, और कोई सत्विचार नहीं होता। अध्यात्म में कोई लंबा चौड़ा ऐसे लिख दे उसको सत्विचार नहीं कहते, याद रखिए, उसको सत्विचार नहीं कहते। सत्विचार की जो परिभाषा है वो यही है जो सत्पुरुष से प्रकट हुआ हो, सत कहते हैं ईश्वर को, जो ईश्वर से प्रकट हुआ हो वही सत्विचार है। इसलिए उस सत्विचार को पढ़ना और गहरा मनन करना, इसका नाम है स्वाध्याय। तो बिना स्वाध्याय के मुझको सत्संग भी समझ नहीं आ सकता, सत्संग भी समझ नहीं आएगा। जो शब्द सुनूंगा उसके मनमाने अर्थ में समझता रहूंगा और समझ लूंगा मैं समझ गया। शास्त्र का स्वाध्याय करोगे तब पता लगेगा सत्संग में जो शब्द उच्चारण किया गया था उसका मतलब क्या था। सत्संग भी यदि सही रूप में हो रहा हो तब आपको हेल्प मिल जाती है शास्त्रों को समझने में। बस सत्संग का यही लाभ है। शास्त्रों का अपनी बुद्धि से स्वाध्याय जब नहीं कर पाते तो सत्संग के द्वारा थोड़ी मदद मिल जाती है शास्त्रों को समझने में। और दूसरी बात, सत्संग के माध्यम से हमको सत्संगति भी मिल जाती है, अच्छे लोगों का संग भी मिल जाता है, ईश्वर पर चलने मार्ग पर चलने वालों का संग भी मिल जाता है। तो उनका संग मिलने से हमारे जो ऐब है ना, सामाजिक ऐब जो है, सामाजिक बुराइयां जो है, उनसे बच जाते हैं। संसार में भोगी लोगों के संग बैठोगे तो उसने क्या पहना हुआ है, कहां से लाए भाई, मैं भी पूछूंगा, मैं भी ले आऊंगा, फिर भोगवाद बढ़ जाएगा मेरा। ईश्वर के मार्ग के मार्ग पर चलने वालों के साथ बैठोगे तो इन चीजों में कमी आएगी आपके जीवन में, कुछ भोगवाद आपका कमजोर पड़ेगा। तो एक तो आपका जो दैनिक जीवन है इसमें सुधार आ जाता है, दूसरा जो बुद्धि आपकी उसकी समझ में फर्क आ जाता है। जो सत्पुरुष आपको समझाना चाहते हैं उनको समझने लायक बुद्धि का निर्माण हो जाता है, लेकिन मेहनत मैंने खुद ही करनी पड़ती है। इसलिए देखा होगा आपने ज्यादातर सत्संगी वास्तव में देखा जाए तो वो अहंकारी बन जाते हैं कि मैं सत्संगी हूं। ज्यादातर सत्संगी अहंकारी बन जाते हैं कि मैं सत्संगी हूं, क्योंकि केवल सत्संग सुनते रहते हैं, वो कोई मनन नहीं करते, कोई चिंतन नहीं करते। इसलिए एक बात 100 बार सुनने के पश्चात भी जब पूछने बैठेंगे तो वही बात पूछेंगे, क्योंकि समझ ही नहीं आई। समझ क्यों नहीं आई, क्योंकि इस पर मनन नहीं किया, चिंतन नहीं। तो इसीलिए शास्त्रों का जो मर्म है, शास्त्रों की जो गहराई है, वो समझने के लिए पूरा जन्म चाहिए। इस वहम में ना रहें कि मैंने समता व्यास को 10 बार अध्ययन कर चुका हूं, 10 बार पढ़ लिया है, अब पढ़कर क्या होगा। 10 बार पढ़ा है तुम्हें, मनन सारी जिंदगी करना पड़ेगा। और मनन आप तभी कर सकते हो जब वो वचन सामने खुला हुआ हो। जैसे कि मान लिया, एक वचन मैं लेता हूं, महाराज जी ने समता विलास में लिखा है, सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है। सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है। इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी मेरे सांसारिक कर्तव्य हैं A to Z, जितने भी सांसारिक कर्तव्य हैं, उन सबसे अव्वल दर्जे का जो मेरा कर्तव्य है वो है ईश्वर उपासना। लेकिन मैं अपनी करनी में देखूं कि अव्वल दर्जे का मेरा जो कर्तव्य है वो गृहस्थी का पालन है। प्रैक्टिकली मैं यहां खड़ा हुआ, तो क्या मनन कर रहा हूं, क्या मनन कर रहा हूं। इस वचन पर रुकना चाहिए था ना मुझे। बड़े कर्तव्यों की दुहाई देता हूं। किसी प्रेमी से मैं टेलीफोन पर जब बात करता हूं, वो कहता है पत्नी आज्ञा नहीं दे रही है, ठीक नहीं है पत्नी को नाराज करूं, इसलिए मैं तपोभूमि नहीं आ सकता। हो गई बात खत्म, हो गई बात। क्या ये इतना सिंपल सा काम था तपोभूमि जाना कि तूने उसके लिए कोई उपाय नहीं किया। तेरे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए थी, मेरे लिए तो ये जन्म मरण का सौदा है, ये साधारण काम नहीं है। यदि मेरे अंदर विवेक नहीं आया, यदि मैंने जिंदगी में तप नहीं कर पाया, इंद्रियों का संयम नहीं कर पाया, सिमरन में वक्त नहीं दे पाया तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए मैं 100 तरीके का उपाय करता। हो सकता है पत्नी को बड़ा गिफ्ट लाके देता, भाई मैं तुझे ये गिफ्ट दूंगा तू मुझे जाने दे। बात गिफ्ट की नहीं हो रही है, बात उपाय सोचने की हो रही है। एक आपको एग्जाम्पल सुनाता हूं मैं। देखो एक सोचने का तरीका होता है। मुझको यहां तपोभूमि में आते हुए 40 साल हो गए, 40 साल से कोई साल का गैप नहीं हुआ, ये प्रभु की कृपा है। ये तो 40 साल कोई शरीर में रोगी ऐसा आ जाए कि नहीं आ सकूं मैं, तो मुझे उसका अहंकार नहीं है कि मैं 40 साल से आ रहा हूं। एक बार क्या हुआ, क्योंकि मैं एक महीने के लिए आता था तो मेरा जो बॉस था वो फॉरेन कंट्री चला गया, मेरे पास पूरा चार्ज आ गया। मैंने जब एक महीने पहले एप्लीकेशन दी कि मैं एक महीने के लिए आश्रम जाऊंगा, मैं तो अपनी एप्लीकेशन में साफ लिख देता था मैंने आश्रम जाना है और आश्रम का एड्रेस भी लिख देता था। तो मैंने चीफ के पास एप्लीकेशन भिजवाई, वहां से वो ना होके आ गई। तो मेरे मन में विचार आया कि चलो प्रभु का हुक्म नहीं है, इस बार तपोभूमि नहीं जाते। दो तीन मिनट में सोचता रहा, फिर विचार आया यदि तेरी बेटी की शादी होती तो क्या ऐसे ही ऑपरेशन रख के बैठ जाता तू? कोई कोशिश नहीं करता, पूरी कोशिश करता, कन्विंस करने की कोशिश करता, बेटी की शादी है उसका महत्व है। खैर विचार आते ही मैं वो एप्लीकेशन लेकर चीफ के पास गया। अब चीफ कहता है कि जिस इंस्टीट्यूट में 400 साइंटिस्ट हों उस इंस्टीट्यूट का काम कितना इंपॉर्टेंट है ये तुम जानते हो, तो पूरा इंजीनियरिंग सेशन का चार्ज मेरे पास था। तो कोई भी इक्विपमेंट खराब हो गया, मशीनरी खराब हो गई तो कौन एक्शन लेगा उसको, हम तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो मैंने कहा सर मेरे लिए ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी छुट्टी छुट्टी सैंक्शन कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि पीछे कुछ भी गड़बड़ हुई उसके जिम्मेदार तुम होगे। तो मैंने एक मिनट नहीं लगाया, मैंने कहा यह शर्त आपकी मुझे मंजूर है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो जिम्मेदार मैं हूं। उन्होंने मेरी छुट्टी सैंक्शन की, मैंने अपने जूनियर को जो भी कैश मेरे पास कैश दिया, जो भी पावर्स थी पावर्स को ट्रांसफर की, मैं अपने तपोभूमि चलाया एक ईश्वर के भरोसे कि प्रभु करता तो तू है, गड़बड़ करनी है तू ही करेगा, सजा दिलवानी है तू ही दिलवाएगा, और यदि नहीं दिलवानी है तब भी तू नहीं दिलवाएगा, काम कैसे मैनेज होगा तू जाने। तो उसके भरोसे मैं चलाया, जब वापस गया तो कुछ नहीं हुआ, सब चीज ठीक ठाक थी, लेकिन मेरे मन में यह नहीं आया था कि मैं तो ईश्वर की भक्ति के लिए आ रहा हूं सब काम ठीक ही होगा, ना 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 ना, वो जैसा प्रारब्ध होगा वैसा होगा। तेरी पत्नी यदि कलकत्ते में हो बीमार हो जाए तब तू जाएगा नहीं जाएगा, तब भी यही कहेगा हां साहब मैं जिम्मेदार हूं, पत्नी मेरी बिस्तर में पड़ी है मौत के मुंह में जा रही है, मैं कैसे छोड़ दूंगा उसको, तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं जाऊंगा। ईश्वर याद नहीं आया कि रक्षा करने वाला तो ईश्वर है, ये याद नहीं आएगा, तो ये अपना कर्तापन याद आएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे गुरु के वचनों पर गहरा मनन करोगे, जैसे जैसे शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में दौड़ेंगी। जब तक मैं करता हूं तब तक ये मेरा अज्ञान है, और ईश्वर ही करता है ये मेरा ज्ञान है। जब अकर्ता हो जाऊंगा तब पता लगेगा कि ईश्वर अकर्ता है, क्योंकि वहां ना मैं होऊंगा ना संसार होगा, वहां केवल ईश्वर होगा। तो किसके लिए करेगा वो? उस हालत में वो अकर्ता है। इसीलिए कहा गया कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। इस ज्ञान में तेरी स्थिति हो जाएगी, तू ब्रह्म रूप हो जाएगा, तेरा मोक्ष हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वतः।